ओम शांति। परमात्म पालना का एक बहुत ही अच्छा दिव्य स्वरूप वो महारथियों के मुख से उच्चारित ज्ञान वचन है। आज हम सभी के बीच में यज्ञ के एक ऐसे विशेष रत्न उपस्थित हैं कि जिसका इंतजार जब भी मधुबन में आते हैं तो हर एक बाबा के बच्चे को रहता है। उषाबेन जी, हम 3 दिन से आए हैं, रोज कोई ना कोई पूछेंगे उषाबेन नो क्लास क्या रे, उषाबेन नो क्लास क्या रे। हाँ, तो कल हमने कहा कि भाई बारगाम है, नहीं तो पहला ही क्लास उनों का हम रखते हैं। तो आज काफी आह्वान के बाद आप हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। हम सब आपका बहुत प्यार से एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। उषाबेन ऐसी प्रतिभा है कि जिसको कोई भी ब्रह्मावत्स अपरिचित हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अनजान आत्माएं भी, बड़ी बड़ी बुद्धिजीवी आत्माएं भी आपको सुनने के लिए चात्रक हैं। यज्ञ में समय वह था कि जब धार्मिक लोग, बड़े लोग ही आते थे, बुजुर्ग लोग सुनने के लिए। लेकिन जब से ये सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कोर्सेस बाबा ने आपके द्वारा करवाना शुरू किया है, तब से बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं और बाबा के बने हैं। कोई भी ऐसी आध्यात्मिक चैनल नहीं है कि जिसमें आपके लेक्चर्स प्रसारित न होते हो। मधुबन यज्ञ में भी हर साल लाखों आत्माएं आकर के शिविर करती हैं और आपसे लाभान्वित होती हैं। आज हम सभी सुनेंगे बाप दादा की आश, संस्कार मिलन की रास। आदरणीय उषाबेन जी,
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर ये परिवार दिया है। ऐसा परिवार दुनिया में किसी का भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार दुनिया में संभव नहीं। ब्राह्मण परिवार इतना बड़ा परिवार है क्योंकि हम बाबा की मुख संतान हैं, और इसलिए जिस तरह लौकिक में भी कोई माता पिता को अपने बच्चों के प्रति कोई न कोई आश रहती है, ऐसे परम माता पिता को भी हम बच्चों के प्रति अब यही आश है कि मेरे बच्चे भी सब आपस में संस्कार मिलन की रास करें। रास करने का भाव क्या है कि जिस तरह दुनिया में गरबा रास होता है तो लोग हाथ में हाथ लेकर के डांस करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, या ताल पर डांस किया जाता है, तब उसकी शोभा होती है। हर एक अगर अपनी मर्जी से डांस करता रहे, कोई कैसा हाथ हिलाता हो, कोई कैसा पैर हिलाता हो, रिदम में अगर न हो तो वो हंसी का पात्र हो जाता है या एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। किसी के हाथ में डांडिया हो और किसी के हाथ में न हो तो एक दूसरे को लगने की भी संभावना होती है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को जब देखते हैं तो बाबा की भी यही आश है कि मेरे बच्चे भी एक रास करें, क्योंकि यहाँ का रास का ही गायन है भक्ति में महारास के रूप में। सतयुग में महारास होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा महारास तो इस समय का है। तो इसीलिए बाबा की ये आश हम बच्चों के प्रति है कि हर बच्चा संस्कार मिलन की एक रास करे। वास्तव में ये रास की इच्छा बाबा की क्यों है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार है। भक्ति मार्ग में ये टाइटल बाबा को मिला है, जानी जाननहार है। क्या जानता है बाबा? ने कई बार मुरली में ये स्पष्ट कर दिया कि बच्चे मुझे हरेक के अंदर क्या चल रहा है इसको जानने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर भगवान के ये टाइटल को दुनिया में भक्ति में गाया हुआ है, माना हुआ है, तो बाबा क्या जानता है? बाबा समय को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आने वाला समय कौन सा है, और उस समय को देखते हुए बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं। और इसलिए आने वाले समय में इसी संस्कार मिलन की बहुत आवश्यकता महसूस हो। अरे अगर हरेक अपनी रीति से पुरुषार्थ का डांस करते रहेंगे तो ये समय को मंजूर नहीं है। समय को मंजूर है अभी कि हम सब हाथ में हाथ मिलाकर के संस्कार मिलन की रास करें। जिस तरह इस सीजन में भी बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया कि बच्चे अभी निर्विघ्न बनना है, इसका मतलब ये साल विघ्न तो आने वाले हैं, हरेक के सामने आएंगे, और अगर हरेक अपनी अपनी रास में होंगे तो वो विघ्न उसको परास्त पराजित कर सकता है। लेकिन अगर हम सभी मिलकर के चल रहे हैं एक ही ताल में तो वो विघ्न हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। खास करके बाबा गुजरात वालों को 2 साल से लगातार मिलन के अंदर एक ही बात करते रहे, क्या करते रहे कि गुजरात का हर सेंटर निर्विघ्न बने। लगातार 2 साल से बाबा के मिलन के समय जब पार्टी को खड़ा करते हैं, सेवा की पार्टी को जब खड़ा करते हैं, तो आपने अगर नोट किया होगा तो 2 साल से लगातार बाबा खास गुजरात को ये बात कह रहे हैं। और जब बाबा इशारा देता है तो समय को देख करके दे रहा है, और इसीलिए जब बाबा ने गुजरात को कहा कि हर सेंटर निर्विघ्न हो, तो सेंटर माना खाली बहने हो ऐसा तो नहीं आता है, सेंटर माना सारा ब्राह्मण परिवार, उस सेंटर के सभी ब्राह्मण जो है ये परिवार को निर्विघ्न बनना है। कहने का भावार्थ बाबा का ये है कि संगठन में बल होता है, संगठन में ताकत होती है। अगर संगठन में इस परिवार में अगर हमने ये कहना शुरू कर दिया क्या करे मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी आदत ऐसी है। अगर इस तरह की भाषा हम बोलने लगे तो आदत कभी भी हमें अदालत में जाने से बचा नहीं सकती है। आदत हमें अदालत यानी धर्मराजपुरी तक ले जा सकती है। और उस समय हम ये नहीं कह पाएंगे बाबा को, हमें पता ही नहीं था। बाबा आप थोड़ा इशारा तो देते थे, तो बाबा ने इशारा इसीलिए गुजरात वालों को खास दिया है कि हर सेंटर निर्विघ्न हो, और निर्विघ्न होने के लिए संगठित रूप में हमें संस्कार मिलाते हुए चलने की आवश्यकता है। खास करके बाबा ने जब संस्कार मिलन की बात कही, और अगर संस्कार नहीं मिलता है किसी भी कारण से, आपस में एक व्यक्ति का भी अगर संस्कार न मिले, तो उसका परिणाम ये है कि किले की अगर एक ईंट भी कमजोर है तो क्या होगा, आसपास की सारी ईंटों को भी कमजोर करके एक छेद पैदा कर देगा, जहां से माया का आने का रास्ता बड़ा साफ हो जाता है, क्लियर कट माया आ सकती है। मैनेजमेंट में हम लोग हमेशा ये बात सुनाते रहे कि एक किला है और किले के सामने से जैसे कि दुश्मन आ रहे हैं, किले के अंदर जो सैनिक है जिसको उस किले की रक्षा करनी है, लेकिन किसी कारण से वो सैनिक आपस में मतभेद में आ गए, वो आपस में अंदर अंदर लड़ने लगे, अपनी शक्ति को दिखाने लगे, तो जो बाहर से अटैक होना है उसके लिए कितना रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि अटेंशन की कमी बाहर के दुश्मन वार करने में देरी नहीं करते हैं। इसी तरह हम भी बाबा के सल्वेशन आर्मी के सैनिक है, योद्धा है, जिसको ये ब्राह्मण यज्ञ को, ये यज्ञ की किले की ईंटों को जैसे एकदम मजबूत करके ये किला बनाना है। सेंटर हमारा किला है और ये किले को हमें मजबूती से खड़ा करना है, लेकिन इस किले के अंदर अगर ब्राह्मण आपस में कोई बात के लेकर के मतभेद में आए तो उस सेंटर की सुरक्षा कितनी हो सकेगी, और उसके लिए फिर निमित्त कौन बनेगा। तो दुश्मन को वार करना तो बहुत सहज स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक अपने आप को इतने सशक्त कर ले कि आपस में कोई भी प्रकार की हमारी मत मतांतर न हो, मत भेद न हो, इतना हम एक ही मत में, एक ही श्रीमत के माला में पिरोए हुए हो। इसको कहते हैं संस्कार मिलन के रास, और अभी उसी की आवश्यकता है समय के हिसाब से। संगठन में जो शक्ति है वो बड़े से बड़े बात को भी क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। एक एक व्यक्ति युद्ध करता रहेगा अपनी रीति से तो कहां तक वो सामना कर पाएगा। एक तो अंदर से भी मतभेद है, बाहर से भी अटैक है, तो कितना व्यक्ति सशक्त रह सकेगा। इसलिए संगठन की आवश्यकता है। दूसरी मैं दादी के क्लास की याद आ रही थी मुझे, गुलजार दादी के क्लास की, कि संस्कार मिलन अगर नहीं होता है तो उसका कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, संस्कार मिलन क्यों नहीं हो पाता है, वही मतभेद का कारण क्या है। दे अभिमान और कोई कारण, व्यर्थ संकल्प। मतभेद का मुख्य कारण दादी ने बहुत सुंदर बताया कि चारों सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट की कमी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में फुल नहीं है, हम अधूरापन है, कमी है। ये कमी के कारण ही हमारी रास नहीं हो पा रही है। अगर सभी चारों सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन दे तो रास करना आसान हो जाएगा, लेकिन जहां कोई ना कोई सब्जेक्ट की कमी है, ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो हम बात को देखते हुए ड्रामा नहीं समझ पाते हैं, बिंदी नहीं लगा सकते हैं। ज्ञान की कमी है, बिंदी लगाना मुश्किल है, और वहां टकराव, मतभेद या देह अभिमान की टक्कर बहुत आसान है, फिर व्यर्थ संकल्प तो चलना ही है, रिजल्ट है ये। तो इसीलिए दादी ने कहा कि ज्ञान की कमी यानी ज्ञान के एप्लीकेशन की कमी है। आज की दुनिया के अंदर मोबाइल हर एक प्रयोग करता है, यहाँ शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास मोबाइल न हो। एक होता है वो 1000 रुपए का डब्बा है ना, और एक होता है 40-50 हजार वाला। अब जबकि बात ही करनी है तो 40-50 हजार का क्यों लेता है इंसान, क्यों लेता है? क्योंकि वो 40-50 हजार के मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। माताएं नहीं समझेंगी इस बात को, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं जो वो 1000 रुपए वाले मोबाइल में नहीं होते। या दूसरे शब्द में कहे कि वो 50 हजार के मोबाइल माना एक पूरा कंप्यूटर उसके हाथ में है, बहुत काम उससे, वो बैठे बैठे, उसको कंप्यूटर खोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बैठे बैठे वो कर लेता है। सारी दुनिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको मिल जाती है उसी में। ये उसका कारण है जिस कारण उसका इतना महंगा है। अब मान लो कि जिसको ये एप्लीकेशन यूज करना आता ही ना हो, और उन बूढ़ी माताओं को आप 50 हजार का मोबाइल गिफ्ट कर दो तो क्या होगा, क्या होगा? वो तंग होते रहेंगे, क्योंकि वो सारा टच स्क्रीन होता है, और बात करते समय अगर उनका ये गाल भी टच हो जाता है तो बंद हो जाता है, या कहीं और लग जाता है कोई और हो, तो वो तंग होते हैं कि इतना बड़ा महंगा मोबाइल कोई काम का नहीं है। वो उसके अंदर से यही निकलेगा, कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं है कि किस तरह से उसको पकड़ना चाहिए। कई बार वो साइड के बटन ऐसे पकड़ लेते हैं तो उसका वॉल्यूम ही स्लो हो जाता है, तो वो और ही तंग होता है, कुछ सुनाई नहीं उससे। तो वो 1000 रुपया वाला डब्बा में अच्छी बात होती है, कहती है ना माताएं अपने बच्चों को कि भाई ये क्या पकड़ा दिया तुमने मुझे, है ना, इससे तो मेरा वो 1000 रुपया वाला मोबाइल अच्छा, ये 50 हजार कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको मालूम नहीं इसकी एप्लीकेशंस, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसी तरह जिसने बचपन से ही अगर स्मार्टफोन यूज किया है, मेरे सामने अभी एक विदेशी बहन थी, 2-4 दिन पहले की बात है, थोड़े पहले की बात है, जिसने बचपन से ही समझो स्मार्टफोन यूज किया, वो जब यहाँ आई तो उसने टेलीफोन वालों को कहा कि मुझे इंटरकॉम दे दो आप, जो यहाँ मेरे को कारोबार जो करनी है वो मैं कर सकूं। तो उसको वो 1000 रुपया वाला पकड़ा दिया, भाई इंटरकॉम ही चलाना है तेरे को तो और कुछ काम नहीं है तो ये ले लो। अब उसने कभी वो 1000 रुपया वाला मोबाइल यूज ही नहीं किया है तो उसको आता ही नहीं है, नंबर कैसे लगाना, ढूंढना कैसे, उसको आता ही नहीं। उसको कह दिया कि पूरी डायरेक्टरी है अंदर में, लेकिन उसने कहा मुझे ये नहीं आता है कि इसमें से कैसे मैं डायरेक्टरी ढूंढूं। वो उसी में तंग हो रही है, वो विदेशी उसी में तंग हो रही है कि ये भले पकड़ाया मुझे इंटरकॉम लेकिन मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं एक नंबर नहीं ढूंढ पाती हूं इसमें से। ये बात है। इसी तरह बाबा ने भी हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इतने सारे एप्लीकेशन दिए हैं, जो अगर उसको एप्लीकेशन आ जाए ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स की, तो वो उसी ज्ञान के अंदर इतनी रमणीकता से आगे बढ़ता जाए, सबको साथ में लेकर चल सकता है। लेकिन जिनको उन एप्लीकेशन का पता नहीं है, उनको अगर पूछो ज्ञान का सार क्या है, तो क्या कहेंगे, आत्मा समझ के बाप को याद करना, वो 1000 रुपया वाला मोबाइल ठीक है हमारे, और कुछ समझता नहीं, हमको आत्मा समझ के बाप को याद करना है, आत्मा अभिमानी स्थिति बनानी है। लेकिन जो बुद्धिजीवी है उनको ज्ञान रत्नों से खेलने के लिए वो एप्लीकेशन बता दो तो सारा दिन उसकी बुद्धि क्या करेंगी, उसी में खेलना शुरू कर देती है, और उसके लिए वो चीज इतनी अच्छी महसूस होती है कि हर रोज सारा दिन जैसे ज्ञान रत्नों से खेलने में आनंद आता है। और वही गांव के माताओं को कहो तो कहेंगे बाबा ने एक बात कही, आत्मा समझ के मुझे याद करो, बस हम वही करते हैं, वो उसमें बोर नहीं होते, उसको वही एप्लीकेशन, और वो हर जगह उसी एप्लीकेशन से पास भी हो जाती है कि सर्व संबंध से बाबा ने कहा मुझे याद करो, मुझे सर्व संबंध से बाबा को याद करते, और उसको अनुभव होता है। और ये अनुभव करने के लिए जितनी वैरायटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते उसी के आधार से अनुभव करते है कि नहीं। जैसे ड्रामा की पॉइंट का एप्लीकेशन कहां करना है, ड्रामा की पॉइंट का एप्लीकेशन पास्ट की बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। ड्रामा की पॉइंट की एप्लीकेशन वर्तमान में, कोई भी ड्रामा की सीन अगर आती है तो उसको कार्टून शो समझ करके पास करने के लिए होती है, उससे उलझने के लिए नहीं होती है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, नहीं। बाबा ने हमें ड्रामा का ये ज्ञान दे दिया है कि बच्चे ये कार्टून शो है, तो जब उसको कार्टून शो के रूप में देखते हैं तो उसमें क्या करता है, आनंद आता है, परेशान नहीं होते हैं। लेकिन ड्रामा के पॉइंट की एप्लीकेशन फ्यूचर के साथ नहीं हो सकती है कि जो मेरे ड्रामा में होगा वो होगा, नहीं, बाबा ने मना किया है। ऐसा जो कहने वाला समझने वाला महामूर्ख है, तो ड्रामा की एप्लीकेशन कहाँ है, फुल स्टॉप लगाने। कोई मतभेद हुआ तो क्या कहो, ड्रामा फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाने के लिए उसकी एप्लीकेशन। तो एक ड्रामा की पॉइंट की कितनी एप्लीकेशन है, और जो उन एप्लीकेशन को यूज कर सकता है वो परेशान नहीं होता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट हो जाता है और वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने लगता है। किसी के संस्कार को देखते हुए परेशान नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बाबा ने हमें ये भी एप्लीकेशन दिया है कि बच्चे जैसे परिवार के अंदर अगर एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो तो क्या लोग चलते चलते उसको लात मारते रहेंगे, क्या करेंगे? सहारा बनेंगे, सहारा बनेंगे उसके लिए। तो हमारे इस ब्राह्मण परिवार के अंदर भी अगर कोई आत्मा ऐसी है जिसके कड़े संस्कार है और उस संस्कार से वो खुद भी परेशान है और उसका प्रयोग हो जाता है, तो उसको बार बार में लात मारते रहेंगे या उसको सहारा देते हुए, शुभ भावना रखते हुए उसको मदद करेंगे? क्या करेंगे? ये परिवार है, सहयोगी बन जाएंगे, न कि उसके संस्कार को देख करके आप उसको दो चार शब्द ऐसे सुना दो जो उसको क्या हो जाए, ना उम्मीद, हिम्मतहीन, जीवन में उठने की हिम्मत भी नहीं हो उसकी, इतना टूट जाए अंदर से। ये संस्कार मिलन नहीं है। संस्कार मिलन माना उस आत्मा की कमजोरी को देखते हुए, उसके प्रति रहम भावना को अपनाते हुए, शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते हुए उसको सहारा देकर के उठाओ। उसका जीवन का पहिया जो है किसी संस्कार के दलदल में फंस गया है। जैसे पहले के जमाने में हम देखते हैं कि मान लो कि किसी का अगर बैलगाड़ी होती है तो दिखाते हैं कि पहिया फंस जाता है किसी उसमें, तो सारे लोग मिलकर के साथ देकर के उसको निकाल देते हैं। ये है संस्कार मिलन की राज। इसी तरह किसी का जीवन का पहिया किसी संस्कार के दलदल में फंस गया है, खुद भी वो तंग हो रहा है, तभी तो दूसरों को तंग कर रहा है। दूसरों को तंग व्यक्ति तभी कर पाता है जब खुद उस संस्कार से तंग है। तो उसकी ये मजबूरी को देख करके हमें हंसना नहीं है। ये देखो कितने समय से ज्ञान में फिर भी ऐसा, ये नहीं, उसको सहारा देना है, योगदान दे करके उसको बाहर निकाल देवे उस पहिये को, ये मदद, ये है संस्कार मिलन की रास, है ना? तो कोई भी सब्जेक्ट की कमी अगर है, योग की सब्जेक्ट की कमी है, या जैसे कहा कोई भी एप्लीकेशन उसको नहीं आता है, तो हम उसके लिए प्रयोग करके निकाले, उसको उसमें से बाहर निकाले। देह अभिमान है कह करके हम छोड़ तो नहीं सकते, बड़ा देह अभिमानी व्यक्ति है, छोड़ दो इसको, नहीं। देह अभिमान के कारण अगर वो लंगड़ा रहा है अपने पुरुषार्थ में, तो हम अपनी देही अभिमानी स्थिति से उसको सकाश दे, ताकि उसका लंगड़ाना खत्म हो जाए। ये टांग उसको देने की आवश्यकता है। ये है संस्कार मिलन की रास करना, क्योंकि आखिर भी हमारा परिवार है ना? कि इसके अंदर ये सब्जेक्ट की कमी है इसलिए छोड़ दो, नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरे अंदर ये संस्कार जो है बहुत विघ्न रूप बन रहा है, विघ्न क्रिएट कर रहा है, कैसे पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम वो आत्मा खुद भी अगर किसी के सामने बोल सकती है, सहयोग ले सकती है, तो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं ले पाती है, तो उसको, उसके लिए भी बाबा ने विधि बताई है कि बच्चे वरदान तो ले सकते हैं ना, तो अमृत वेले उठ करके बाबा से उस सकाश का वरदान लो, और वरदान लेकर के उस संस्कार को खत्म करने की मदद बाबा देते हैं। रियलाइजेशन का एक कदम हमारा होता है हिम्मत का, और हजार गुना बाबा मदद करने के लिए तैयार। मान लो कि मैंने अगर अंदर में रियलाइज कर लिया कि मेरा ये संस्कार है जो मेरा बहुत कड़ा है, जिसको मिटाना चाहते हुए नहीं मिटा पा रही हूं, और दूसरे किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, तो अमृत वेले बाबा से वरदान तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। साथ ही साथ बाबा की संडे की मुरली मुझे याद आ रही है, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी उसमें, संपूर्ण पवित्रता की बात बाबा ने कही, और संपूर्ण पवित्रता में बाबा ने कहा ऑनेस्टी, है ना? तो माना संस्कारों के प्रति भी ऑनेस्टी, संस्कारों के प्रति भी ऑनेस्टी चाहिए। कि अगर कोई, बाबा ने कहा ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं चतुराई से चलते हैं, कुछ बताते हैं बाबा को, कुछ छिपाते हैं, फिर कहे बाबा मदद करे, लेकिन जब पूरा बताया ही नहीं बाबा को, तो बाबा की मदद कैसे मिल सकती है? तो चतुराई से नहीं, ऑनेस्टी माना चतुराई नहीं, स्पष्टता। कई बच्चे समझते हैं कि ये मेरा संस्कार है, उसको मैं ठीक कर लूंगा, है ना? अपने आप में जैसे हिम्मत रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर लगातार किसी बात के कारण नहीं हो पा रहा है, परिवार से अगर सहयोग लिया, है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मानो परिवार को भी नहीं बता रहे हैं, बाबा के सामने भी नहीं बता रहे हैं, तो वो बीमारी अंदर में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही उस मुरली के अंदर कि कई बार जो लोग, जो बच्चे बताते नहीं है, चतुराई से चलते हैं, जब तक बाबा को नहीं बताएंगे तो बाबा भी कुछ नहीं करेंगे, है ना? बाबा को स्पष्ट बताना पड़ता है। कई लोग क्या सोचते, बाबा तो सब कुछ जानता ही है ना, नहीं, लेकिन मेरी ऑनेस्टी किसको कहा जाए? कि भगवान भले सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मेरी सच्चाई सफाई यही है कि मैं बाबा को सुनाऊं। छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी समय पर, ये नहीं समझो। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को कैंसर की बीमारी होती है, शुरू में उसका पता नहीं चलता है, अगर कुछ लक्षण दिखाई भी दिए, लेकिन फिर भी चलाते रहे कि कुछ नहीं है, दो दिन में ठीक हो जाएंगे, दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे करके चलाते रहे, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे, फिर आगे चलकर क्या होता है, जब वो कैंसर दूसरी या तीसरी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है, और जब बड़े स्वरूप में बाहर प्रत्यक्ष होती है, इसी तरह बाबा कहते हैं जो संस्कार को आज आप छोटा समझ रहे हैं, जो संस्कार को आप समझ रहे हैं ये छोटी सी बात है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे जो अंदर वृद्धि पा रहा था, उसका एहसास नहीं हो रहा था हमें, क्योंकि उसको मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है, ये मेरा संस्कार है, स्वीकार कर लिया। तो अंदर अंदर वो वृद्धि को जब प्राप्त हो रही है, समय आने पर वो कमजोरी वाला संस्कार क्या होगा, प्रत्यक्ष करेगा आपको, आपको प्रत्यक्ष करेगा। और उस समय जब आप सबके सामने प्रत्यक्ष होंगे, जैसे कैंसर की बीमारी प्रत्यक्ष हो गई तीसरी स्टेज में, उसके बाद कोई इलाज नहीं है, उसके बाद कोई इलाज नहीं, और उसके बाद उसकी भोगना स्वयं को ही भोगनी पड़ती है। कोई कितनी भी आपके प्रति सहानुभूति दे देवे, लेकिन फिर भी वो राहत नहीं अनुभव करा सकती है, इतना उसका पेन अधिक होता है। ठीक इसी तरह जो संस्कार आज छोटे रूप में है, समय आने पर अंदर ही अंदर वो वृद्धि होता गया। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को लिख करके दे दो, अगर नहीं हो रहा है तो लिख करके दे रो। और जब बाबा को दे दिया तो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है, बाबा उसको ठीक करेगा। लेकिन अगर मैंने छिपाया तो अंदर ही अंदर जो वृद्धि हो रही है उसका मुझे पता नहीं, एहसास नहीं, और समय आने पर वो प्रत्यक्ष करेगा। और जैसे ही वो प्रत्यक्ष होगा, समय जो स्थिति होगी जब सबके सामने आपकी कमजोरी प्रत्यक्ष हो गई, उस समय कितनी शर्मिंदगी होगी कि इस संस्कार को मैंने छोटा मान करके चलाते रहे, प्रत्यक्ष हो गई तो क्या होगा? उसके बाद कोई इलाज नहीं है, भगवान भी नहीं कर पाएगा, जैसे सर्जन भी नहीं कर पाता है दुनिया में, बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है। पहले स्टेज में अगर करवा लेते थे तो हो जाता था, ठीक हो जाता था, लेकिन इस तरह से जब वो संस्कार आपको प्रत्यक्ष करेगा समय पर, तब भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो उसकी भोगना होगी, उस संस्कार के कारण जो भोगना होगी, वो किसको भोगनी पड़ेगी? खुद को भोगनी पड़ेगी। उस समय सारा ब्राह्मण परिवार भी अगर आपके लिए योगदान देना आरंभ करे तो भी वो इतनी राहत नहीं अनुभव करा पाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी संस्कार जिसको आप समझते हो लिख करके बाबा के दे दो। और ये बहुत सुंदर मौका है कि मधुबन आए हैं, बाबा की तपस्वी भूमि पर आए हैं, और अंदर में अगर भट्टी में हमने अपने संस्कारों को बाबा रियलाइजेशन कराएगा, ड्रामा रियलाइजेशन कराएगा, उस संस्कार को अभी से बाबा के सामने लिख करके दे दो और बाबा से अमृत वेले उसके लिए सकाश लो, शक्ति लो, और उस संस्कार को अपने आप में ठीक करना ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है ना? और तब हम दूसरों के साथ भी संस्कार मिलन की रास में एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस तरह के कोई अपने संस्कार के लिए कहते हैं कि मेरी आदत है, तो अब अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की आदत इतनी पक्की कर लो कि वो आदत आपको बार बार उस स्थिति की ओर खींचे, आदत खींचे, हमें बार बार उस स्थिति की ओर प्रेरित करे कि हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। नहीं तो जिस तरह से कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार आदत होती है वो अपने तरफ खींचता है ना, ना चाहते हुए। जैसे मान लो एक गुस्से का संस्कार है, समझ है गुस्सा बुरी चीज है, लेकिन वो आदत खींचती है उस तरफ। इस तरह बाबा कहे पॉजिटिव संस्कार को ऐसा आदत बना दो जो आदत आपको उस ओर खींचे, और तब हम अपने ब्राह्मण परिवार को, अपने सेंटर को निर्विघ्न बना सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार कई लोग बाबा से शिकायत करते हैं कि बाबा मैं जानता हूं कि ये संस्कार बुरा है, मैं गुस्सा करना बुरा है, लेकिन उस समय सहन शक्ति को आह्वान करता हूं तो शक्ति आती नहीं है, क्या करूं? क्या करेंगे फिर? शक्ति का आह्वान तो किया कि भाई ये समय मुझे सहन करना है संस्कार मिलन करने के लिए, लेकिन वो शक्ति आती नहीं है तो क्या करे? क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? अभ्यास नहीं, इसलिए। और बाबा ने तो कहा आप कोई भी शक्ति का आवाहन करो, वो शक्ति आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। बाबा ने कहा है उसके लिए कि कोई भी शक्ति आपका ऑर्डर कब मानेंगी? जब सीट पर होंगे तब ऑर्डर मानेंगे। अगर सीट से नीचे उतर जाएंगे, देह अभिमान की सीट में आएंगे, मिट्टी में आएंगे, मिट्टी में बैठ गए और शक्ति का आह्वान करेंगे, तो वो शक्ति आपका ऑर्डर स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेंगे। सीट का ही तो महत्व है। तो इस तरह बाबा कहे जब आप सीट पर बैठ करके, स्वमान की सीट पर स्थित हो करके आप उस शक्ति का आवाहन करो और देखो वो आती है कि नहीं आती है। आएंगी, जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? आएंगी। लेकिन सीट पर बैठकर उस शक्ति का आवाहन करो। नीचे खड़े होकर, मिट्टी में पैर रख करके खड़े होकर के आप कितना भी शक्ति का आह्वान करो, देह अभिमान की मिट्टी में खड़े होकर के आप शक्ति का आह्वान करो तो आएंगी क्या? देह अभिमान ही उसको आने नहीं दे रहा है, उस शक्ति को आने नहीं दे रहा है। इसलिए बाबा कहते सीट पर बैठ जाओ ताकि देह अभिमान की मिट्टी से आपके पैर ऊंचे हो गए, परे हो गए, और फिर जब आप उसका आवाहन कर रहे हो तब वो, जैसे मेरे आका में हजूर है, हाजिर हूं आपके सामने आपकी सेवा में, ये कहते हुए वो शक्ति भी हाजिर हो जाएंगी, है ना। और इस तरह से शक्तियां भी आपके अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। कई बार कई लोग सोचते हैं कि बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन बाबा तो निराकार है ना, उनके लिए तो सहज है, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा है, साकार बाबा को तो देखा है ना, उसने डे वन से पुरुषार्थ किया ना, संसार में ही थे लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ करके अपने आप को ठीक किया, हर संस्कार को। कोई ब्रह्मा बाबा परफेक्ट था ये तो नहीं था, कई बातें थी बाबा के अंदर भी, लेकिन उन्होंने अपने आप से भी कितना मेहनत किया है तब जाकर, तभी तो बाबा ने पिछले 2 साल सीजन की मुरलियों में ये बात बार बार रिपीट किया कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलो तो सहज हो जाएगा। हर बार अपने आप से पूछो के अगर बाबा होते थे तो क्या करते थे, अगर बाबा होते थे तो क्या करते थे। तो कमजोरी देखने के बजाय परिवार के सदस्यों में हर एक में बाबा ने कोई ना कोई विशेषता भी भरी हुई है, इसीलिए बाबा ने चुना हुआ है उस आत्मा को, उस विशेषता के कारण ही बाबा ने चुना है, है ना। तो ब्राह्मण परिवार में अगर कमी कमजोरी है तो हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता भी जरूर है, और उस विशेषता को समझते हुए जब हम परिवार में एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं या उसको कार्य में लगाना आरंभ करते हैं तब ये गुलदस्ता, आज बाबा ने कहा ना, बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है गुलगुल बनाने का। जब बाबा ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है गुलगुल बनाने का तो इसीलिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैंने अपने बुद्धि की डोर बाबा को कितना दिया है वो मुझे देखना है अपने आप में। अगर वो डोर मैंने नहीं दिया है तो बाबा की मदद को स्वीकार कैसे कर पाएंगे। उसके लिए जैसे अमृत वेले बाबा से वरदान लेते हैं, इसी तरह रात को सोने से पहले जैसे बाबा ने कहा अपनी दिनचर्या को चेक करो, अपने चार्ट को चेक करो और देखो अपने चार्ट के अंदर कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रियां मेरी विचलित हुई या किस कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत के आज्ञा पर न चली, ये रियलाइज करना है। और रियलाइज करते हुए चार्ट को देखते हुए बाबा को सच सच सुना देना, और दूसरे दिन के लिए जैसे बाबा को ये निवेदन करना नम्रतापूर्ण कि बाबा कल सुबह में अमृत वेले आपके पास इसी बात की शक्ति प्राप्त करने के लिए आऊंगी। और जब रात को उसी संकल्प के साथ बाबा को सब नफा नुकसान सुना करके देते हुए सो जाएंगे तो दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो क्या होगा, उसी स्वमान से अपने आप को बिठाएंगे और तब बाबा का वरदान सहज प्राप्त होगा। बहुत अच्छी मुझे बड़ी दादी की बात याद आती है कि जब दुनिया में भी किसी के पास वरदान लेना होता है, आशीर्वाद लेना होता है, तो लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ के झुकते हैं ना, ऐसे झुकते हैं तब उनको आशीर्वाद देते हैं। कहने का भावार के अपने आप को झुकाना ही बाबा के वरदान के अधिकारी बनाना है। झुकाना माना मोल्ड हो जाना, नम्र हो जाना। जितना अपने आप को नम्र बना देते हैं और बाबा के सामने भी नम्र होकर के अमृत वेले बैठते हैं तो बाबा का वरदान स्वतः मिलेगा। लेकिन झुकाने का मतलब नम्रता, झुकाने का मतलब ये नहीं कि नींद में अब न सर झुका दे, तो कहते हम तो झुक रहे थे ना बाबा के सामने, झुक करके बैठे थे, है ना। गम्मत कई बार करते हैं बच्चे भी बाबा के साथ में, तो बाबा कहे जो ऐसे झुकेंगे तो उसको तो वरदान नहीं मिलेगा। झुकना माना नम्र हो जाना, मोल्ड होने वाला ही बाबा हमेशा कहते रियल गोल्ड बन जाता है, और वही जैसा आकार देना चाहो इस परिवार के अंदर उसको वैसा आकार दे सकेंगे। तो इसलिए संस्कार मिलन बहुत पावरफुल, कि हर एक की विशेषता को देखते हुए उस विशेषता के आधार से उसको साथ में लेकर के चलना, ये है संस्कार मिलन की रास। कि चलो दूसरे कमजोरी है तो कमजोरी को अगर लाएंगे तो रास नहीं कर पाएंगे, लेकिन विशेषता को ले आएंगे तो रास करना सहज हो जाएगा। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता तो है ही है, तो उस विशेषता को लेकर के उसको भी रियलाइज कराना कि बाबा ने तुझे कौन सी विशेषता दी हुई है, उस विशेषता को महसूस करो तुम, इतनी अच्छी विशेषता। तो किसी की भी विशेषता का बखान करते हुए उसको अभिमान ना आए, इसका ध्यान रखते हुए उसको साथ में लेकर के चलो कि इसी विशेषता को लेकर के हम इस कार्य को भी संपन्न करें। तो ये भाव जब अंदर में है, शुभ भावना शुभ कामना है, तो ये है संस्कार मिलन की रास करना। क्योंकि अंतिम समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब हमें अपने संस्कारों को देखते हुए उसको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है, नहीं तो संस्कार तीसरी स्टेज में पहुंच करके आपको प्रत्यक्ष करेगा, जो आप नहीं चाहेंगे सबके आगे प्रत्यक्ष होना। अब तक छुपाया है आपने और फिर वही संस्कार तीसरी स्टेज में पहुंच करके आपको दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करे, उस समय जो शर्मिंदगी महसूस होंगी और उस समय जो महसूस करेंगे कि अरे बाबा तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी, क्या कहेंगे बाबा मैंने कितनी बार कहा इस संस्कार को ठीक करो, वरदान ले लो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, सकाश देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ बाबा की ऑफर, एक हिम्मत का कदम तो तुम बढ़ाओ, मैं हजार गुना मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमने तो उस बात को फिर भी छुपा करके अपने अंदर रखा, अब हम क्या करें, तो बाबा भी क्या करेंगे उसमें। तो इसीलिए अब छोटी छोटी बातों को भी रियलाइज करते हुए अपने आप में परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये कर पाए हम तो अंतिम समय आने से पूर्व हम अपने आप को क्या कर सकेंगे, संपन्न स्थिति या बाबा जो मुझसे चाहता है उस स्वरूप में अपने आप को प्रत्यक्ष करके बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। या तो बाबा की प्रत्यक्षता या तो खुद के कमजोरियों की प्रत्यक्षता। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है। कई लोग कहते हैं बाबा को पूछो कितने पेपर देने पड़ेंगे, कितने पेपर देने पड़ेंगे। मुझे याद आता है कि बाबा जब भी पूछता है मुरली में कि बच्चे लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे राम सीता बनना चाहेंगे, क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे ना, तो लक्ष्मी नारायण की डिग्री क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। अब मुझे कैसे पता चले कि मेरे में सर्वगुण आए कि नहीं आए? तो हर गुण का पेपर आएगा कि नहीं आएगा, हर मर्यादा का पेपर आएगा कि नहीं आएगा, हर कला का पेपर आएगा कि नहीं आएगा, संपूर्ण पवित्रता का पेपर आएगा कि नहीं आएगा, तो कितने पेपर देने पड़ेंगे? अब आप डिग्री लेना चाहते आईएएस की और पेपर देना नहीं चाहे तो डिग्री कैसे मिलेंगी? तो डिग्री लेना चाहते हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण की डिग्री के पेपर कितने होते हैं? कितने पेपर होंगे? तो उतने पेपर तो देना पड़ेगा ना भाई, मेरे अंदर नम्रता है या नहीं है। तो नम्रता का पेपर आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये पेपर में मैं पास हो गई है ना। अगर वो पेपर में बार बार फेल होती रहूंगी तो बार बार वही पेपर तो आएगा कि नहीं आएगा? जब तक नम्रता, इसीलिए जो पेपर में फेल हुए एक बार या दो बार तो वो राम सीता बन गए, जो फेल हुए तो राम सीता ही बनेंगे। तो अगर मुझे पास होना तभी तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जब मैंने लक्ष्य अपना ये रखा कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे राम सीता नहीं बनना है, तो उसके हिसाब का पेपर तो आएगा कि नहीं आएगा? अब जब तक वो गुण मेरे में न आए, जितनी बार मैं फेल होंगी उतनी बार पेपर क्या होगा? बढ़ते जाएंगे। तो मुझे अपने आप को ये समझ लेना है, जब भी कोई पेपर आया, माना कौन से गुण का पेपर आया, ये कौन से गुण का पेपर, अब इस गुण के पेपर में मुझे पास होना है। तो पास होकर के दिखाओ, पेपर कम हो जाएंगे, है ना? नहीं तो बाबा कहते हैं माया बहुत होशियार है, वो हर बात सुनती है बाबा की, और बाबा की सुन करके बाबा भी उसको कहते मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, लो पेपर लो, इसका भी लक्ष्मी नारायण बनने निकला है, लो उसके हिसाब से पेपर। हाँ, तो इसलिए लक्ष्मी नारायण बनना है तो संस्कार मिलन तो हमारा सबके साथ होना ही चाहिए, फिर तभी तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ठीक है ना? तो ये है कि समय के अनुसार ब्राह्मण परिवार अगर संगठित रूप में हो जाए तो एक दूसरे को योग का सहयोग देते हुए भी उसको उस पेपर को पास होने में मदद मिल जाएंगी। बाबा का वरदान और ब्राह्मण परिवार का सहयोग, ये समय की आवश्यकता है, तभी निर्विघ्न खुद भी रहेंगे और अपने सेंटर को भी निर्विघ्न बनाएंगे। और यही ब्राह्मण यज्ञ वत्स होने के नाते यज्ञ रक्षक हम खुद है, तो हमारा सेंटर हमारा यज्ञ है, और हमारा सेंटर हमारा यज्ञ है तो हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न रहे, उसके लिए मैं भी एक इकाई हूँ उसकी, है ना? ओम शांति।
ओम शांति। आने वाले समय के लिए यज्ञ के किले को मजबूत करने के लिए, भविष्य की इन संस्कारों की कर्म भोगनाओं से स्वयं को मुक्त रखने के लिए, ये संस्कार मिलन का रास आवश्यक नहीं, लेकिन क्लास सुनते हुए मुझे लग रहा था कि अब तो अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है ना? तो आज हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से विधि पूर्वक क्या संस्कार मिलन है, किस प्रकार करना है, किसको कहेंगे संस्कारों का मिलन, ये बहुत स्पष्ट रीति से उषा बेन जी ने हम सभी के सामने रखा है। हम सब इन बातों को स्वयं में समाते हुए यज्ञ के खातिर भी, बाबा के खातिर भी अपने आप को इस रास के अंदर माहिर बनाएंगे, ठीक है ना? बेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
सब में